नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय संदीपनी कृष्ण संदीपनी सब पंखा बंद कर दीजिए। हरे कृष्णा। आज सब कुछ लेट चल रहा है, प्रसाद भी लेट होगा, चिंता मत करो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम पांचवां स्कंद से अध्याय पांच। यह अंतिम श्लोक है, गद्य है, श्लोक 35। इति नाना योग चर्या आचरण भगवान कैवल्यपति ऋषभ अविरत परम महा आनंद अनुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती वासुदेवे आत्मनः अव्यवधान अनंत रोदर भावेन सिद्ध समस्त अर्थ परिपूर्ण योग ऐश्वर्याणि वैहायस मनहजव अंतर्ध्यान परकाय प्रवेश दूर ग्रहण आदिनी यदृक्षया उपगतानी न अंजसा नृप हृदयेन अभयनंदत। तो एक गद्य है इसलिए पढ़ूंगा। इति नाना योग चर्याचरण भगवान। चलो भाई हटो, क्या कर रहा है? ठीक है, जो कर दिया कर दिया। इति नाना योग चर्या आचरणो भगवान कैवल्यपति ऋषभो अविरत परम आनंदानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानां आत्मभूते भगवती वासुदेवे आत्मनो अव्यवधानांतरो उदरभावेन सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण योगैश्वर्याणि वैहाय समनो मनोजवांतर ध्यान परकाया प्रवेश दूरग्रहणानिधि यदृक्षय योपगतानि नांजसा नृप हृदये न अभिनंदत। तो आप लोग इति इस प्रकार, तो जोर से बोलो, प्रसाद तो है बाद में, काहे चिंता करते हो? फास्टिंग के नाम से तो डर गए क्या? नाना अनेक जोग जोग की चर्या क्रियाएं आचरण अभ्यास करते हुए भगवान श्री भगवान कैवल्यपति कैवल्य के स्वामी अथवा साजुज्य मुक्ति के दाता ऋषभ देव अभियत निरंतर परम महा अत्यधिक आनंद अनुभव, आनंद के अनुभव द्वारा आत्मने परम आत्मा में सर्वेशां सब भूतानां प्राणियों के आत्मभूते हृदय में स्थित होकर भगवती श्री भगवान वासुदेवे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण में आत्मनः स्वयं का अव्यवधान विधान में अंतर न आने से अनंत असीम रोदर यथा रोदन हास तथा सिहरन भावेन प्रेम के लक्षणों से सिद्ध सिद्ध पूर्ण समस्त सब अर्थ वांछित धन परिपूर्ण पूरित जोग ऐश्वर्याणी योग शक्तियां वैहायस आकाश में उड़ना मनाजब मन की गति से दौड़ना अंतर्धान अदृश्य होने की शक्ति परकाय प्रवेश दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता दूरग्रहण दूर को दूर के वस्तुओं को देखने की शक्ति दूरदृष्टि अदिनि इत्यादि अदृक्षया स्वतः उपगतानि प्राप्त किया न नहीं अन्यसा प्रत्यक्षतः नृप हे राजा परीक्षित हृदयेन हृदय से अभ्यनंदतः स्वीकार कर लिया। तेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन बैक साइड अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजा परीक्षित श्री कृष्ण के अंश भगवान ऋषभदेव ने समस्त योगियों को योग साधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किए। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे। वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं, उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। फलतः भगवान ऋषभदेव रोने हंसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। आई थॉट यू ब्रजहरी करवाजान कंग्रेचुलेशन वेरी गुड। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियां अपने आप उनके पास पहुंचती यथा मन की गति से आकाश गमन प्रकट और अदृश्य होना अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सब को कर सकने में समर्थ थे किंतु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। तात्पर्य चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। वामनदेव अशांति रहोगे
देखो आसान था, बैठा था कथा के लिए, चल दिया। शांत शब्द का अर्थ है परम शांति से युक्त। जब तक मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती वह शांत नहीं हो सकता। फिर से, शांत शब्द का अर्थ है परम शांति से युक्त। जब तक मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती वह शांत नहीं हो सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आकांक्षाओं तथा कामनाओं के प्रति चाहता है, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक। जगत में रहने वाले लोग अशांत हैं क्योंकि उनकी आकांक्षाएं अगणित हैं, किंतु सद भक्त निष्काम होता है। अन्याभिलाषता शून्य। शुद्ध भक्त सभी प्रकार की भौतिक कामनाओं से मुक्त होता है। इसके विपरीत सारे कर्मी कामनाओं से युक्त होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति का सुख उठाना चाहते हैं। वे न तो इस जीवन में शांत हैं न ही अगले जीवन में होंगे। इसी प्रकार ज्ञानी लोग मुक्ति कामी होते हैं और परमात्मा के साथ तदात्म चाहते हैं। योगी जन सिद्धियों के पीछे रहते हैं, किंतु भक्त को इन वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती क्योंकि वे कृष्ण के अनुग्रह पर पूरी तरह आश्रित रहता है। कृष्ण जोगेश्वर हैं, समस्त जोग सिद्धियों के स्वामी हैं, वे आत्माराम अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। इस श्लोक में योग सिद्धियों का वर्णन हुआ है। इनसे मनुष्य बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में उड़ सकता है और मन की गति से यात्रा कर सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि जब कभी कोई योगी इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर कहीं जाने की इच्छा होती है तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। मन की गति को निर्धारित करना कठिन है क्योंकि एक क्षण में लाखों मील जाता है। कभी कभी योगी परकाय प्रवेश करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। वृद्ध होने पर कभी कभी योगी तरुण तथा बलवान शरीर प्राप्त कर सकता है। अपने वृद्ध शरीर को त्याग कर वह तरुण शरीर में प्रवेश कर सकता है और इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। भगवान वासुदेव के अंश होने के कारण ऋषभ देव ने ये सब समस्त योग सिद्धियां योग शक्तियां थी, किंतु वे कृष्ण की भक्ति से ही संतुष्ट थे, जिसका प्रत्यक्षीकरण उनके हंसने रोने या हिलने डुलने से होता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश शीर्षक पांचवें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 मैं सही में बड़े बड़े बैठे हुए हैं लेकिन मेरा चश्मा नहीं है। तो भगवान यदा कदा शिक्षा देने के लिए आते हैं, धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामी जुगे जुगे। कभी कभी भगवान अपने शुद्ध भक्त आचार्यों को भेजते हैं शिक्षा देने के लिए। भगवान ऋषभदेव के अवतार से सब लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है, आसक्त और अनासक्त दोनों को। भगवान ऋषभदेव अपने जीवन काल में गृहस्थों को कैसे गृहस्थी चलानी चाहिए, कैसे गृहस्थ रहना चाहिए, उसका भी शिक्षा दिए। वानप्रस्थ कैसे रहना चाहिए और सन्यासी के क्या लक्षण हैं, इन सब का वे शिक्षा दिए। पीछे के अध्यायों में हम सुने हैं कि वे किस प्रकार से अपना घर गृहस्थी चलाए। उसके बाद वे एक पिता होने के नाते उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, इसी अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। और उन्होंने कहा कि यह पिता का धर्म है, कोई बाप तब तक से बाप नहीं है जब तक से अपने पुत्र को भगवान के पास भेज न दे, मतलब कि मार न डाले, भगवान के पास भेज देना मतलब इतना उसको बुद्धि देना, ज्ञान देना, ताकि भक्ति भाव को अपना करके वो जीवन के अंत में ब्रह्म सौख्यम है, ब्रह्म सुख को अनंतम, भगवान आनंद के द्वारा प्राप्त किए हुए या अनंत ब्रह्म सुख को, आनंद को प्राप्त करे। वास्तव में सब बाप मां यही करते हैं, अपने बच्चों को वो सुख देना चाहते हैं, वो भी अनंत सुख देना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका बंद कर गए, वो समझते हैं अमेरिका पढ़ करके आएगा तो सुखी हो जाएगा, अमेरिका बंद है पढ़ाने के लिए, बिजनेस सेटअप कर करके, लेकिन ये सब सुख नहीं देता है। ये सब जितनी क्रियाएं हैं केवल चार काम के लिए है, खाने के लिए, सोने के लिए, प्रहरी प्रभु की जाए, आपका सीट भी करवाजन प्रभु ले लिया था, मैं समझा कि आप भी बैठे हो, चश्मा नहीं भाई, दूसरा महात्मा दिखाई पड़ा। हाँ जी, तो क्या बात हो रहा था, आगे बढ़ गए थे, चार चीज, हाँ, खाने के लिए, सोने के लिए, बाल बच्चा पैदा करने के लिए और रक्षा करने के लिए। इसी को समझते एक यदि प्राप्त करा दिया जाए अपने बच्चे को तो ये लोग सोचते अनंत सुख को हमारे बच्चे प्राप्त कर लेंगे, ये चार चीज प्राप्त कर लेंगे। तो ऋषभ देव कहते हैं, अरे मूर्खो, ये तो सुअर और कुत्ते को ही मिल जाता है, वो अमेरिका थोड़े पढ़ने गए थे, सुअर मेरा अमेरिका नहीं पढ़ने गया था, बिना अमेरिका पढ़े सुअर खा लेता है, कुत्ता खा लेता है, बिना अमेरिका पढ़े, बिना बिजनेस किए सुअर और कुत्ते बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं, बिना अमेरिका गए फर्स्ट क्लास से नींद प्राप्त करते हैं, बल्कि अभी अमेरिका जाने वाले को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है सोने के लिए, और अपना रक्षा भी कर लेते हैं, तो क्यों इतना खर्चा कर रहे हो। तो आजकल के बाप मां जो अपने बच्चे को अनंत सुख देना चाहते हैं, वो दिशा भ्रमित पथभ्रष्ट सुख है, वह ब्रह्म सौख्यम अनंतम नहीं है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम नहीं है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम के लिए भगवान ऋषभ देव तुरंत यह बात कहने के बाद कहते हैं कि क्या करना चाहिए, कहते महत् सेवा, जिसको भी ब्रह्म सौख्यम तनंतम यदि निश्चय ही अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति करनी है तो पहला काम करना चाहिए महत् सेवा, गुरुकुल में जाओ, वहां सीखो जीवन क्या है, नदी में तैरने कूदने से पहले, तालाब में कूदने से पहले, समुद्र में कूदने से पहले तैरना तो सीखो, डूबकर मर जाओगे। ये संसार जो है इसका उपमा सागर से दिया गया है, ये सागर है, भाव सागर, ये सागर है, संसार में कूद पड़े हैं, कूदने से पहले तो तैरना तो सीखे, इसलिए गुरुकुल में भेजना चाहिए, गुरु के आश्रय में भेजना चाहिए, महत
सेवा, महासेवा। और बड़ा सुंदर उपमा दिया गया है कि महासेवा से क्या होता है, भगवान के सेवा से क्या होता है और संसार के सेवा से क्या होता है। इन सब उपदेशों को दे करके भगवान ऋषभ देव वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किए। करभाजन प्रभु कल हमसे लिफ्ट में पूछ रहे थे कि वानप्रस्थ कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि लाल झंडे आदि दिखा देंगे। तो मैं कहा वानप्रस्थ का मतलब पति पत्नी तीर्थस्थलियों में जाकर के साधु महात्माओं के चरणों में रह करके हरि कथा सुने। और इस प्रकार से जब दोनों में विरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, वैराग उत्पन्न हो जाएगा, तब पत्नी को सुयोग्य पुत्र के संरक्षण में रख करके, क्योंकि स्त्रियों का सब प्रकार से रक्षा होना चाहिए, सुयोग्य पुत्र के संरक्षण में रह करके और स्वयं संन्यास ग्रहण करें। तो इनके लिए तो माताजी तो अभी नहीं है, तो अकेले बच गए हैं। तो बोले जल्दी तक तो लाल कपड़ा कर लेना चाहिए। हैं? सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिया। अब आज से चार धाम यात्रा शुरू होगा। बद्रीनाथ का दरवाजा आज खुल गया, तो आज शुरू कर दो आप। वानप्रस्थ मतलब जंगल में, वन में जाने का। जा रहे हैं अमेरिका? जा रहे हैं? ओ वहां नहीं, अमेरिका नहीं। अच्छा फार्म है, वो भी वन है। वनम गतो यद हरिमाश्रये, तो वन में जाना चाहिए। तो इसको भी सिखाए भगवान ऋषभ देव। वन का मतलब विकट स्थली, जहां पर तपस्या है। मैं वेटिंग कर रहा हूं कि हमारे तीर्थपाद जी कब लाल कपड़ा करेंगे, कब तीर्थ पद जाएंगे, तीर्थपाद ही बनेंगे। सॉरी, एनीवे मैं देखा कुछ लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं कह दिया आपके लिए। अभी वो जगह नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान ऋषभ देव गांव गांव से होकर के, नगरों से होकर के जा रहे थे, और उन्होंने मुखवृत्ति धारण कर लिया था। कुछ मौनी बाबा बन गए थे, कुछ बोलते नहीं थे, जा रहे थे नंग धड़ंग, ऐसे ही जा रहे थे दिगंबर होकर के। बाय द वे, भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के फाउंडर आचार्य हैं। जैन धर्म तो गांव के बच्चे लोग उन्हें बुलवाना चाहते थे। कोई पत्थर मार रहा था, कोई मलमूत्र फेंक रहा था, कोई अपशब्द बोल रहा था। तो भगवान ऋषभ देव सोचे कि असली जंगल में मैं आ गया हूं, अब इन जंगलों से निकलना चाहिए, क्योंकि यहां भजन नहीं हो पा रहे हैं। वो सीखना चाहिए कि मेन लक्ष्य है भजन करना, मेन लक्ष्य जंगल में जाना नहीं है, भजन करना। यदि बंबई में भजन हो सके तो तीर्थपाल आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि प्रभुपाद ने कहा है कि आजकल जंगल कहां रह गए हैं, सब तो काट काट करके लोग शहर बना रहे हैं। आजकल का शहर जो है बंबई कलकत्ता, ये सब बहुत बड़ा जंगल हो गया है, कि जंगल में कंक्रीट होता है, यहां पर सब कंक्रीट है। जंगल में पशु होते हैं, यहां भी सब पशु हैं। जंगल में चार पैर वाले, यहां दो पैर वाले, द्विपाद पशु, खूंखार जानवर, ये मनुष्य लोग खूंखार हो गए हैं। जिसमें भक्ति नहीं है, धर्म विहीनो पशुहीन नारायणाम, जिसमें धर्म की प्रधानता नहीं है वह व्यक्ति कैसा है, पशु के समान है। तो शहर भी आजकल बन हो गया है। यदि भजन ना हो, चाहे जंगल हो, चाहे शहर हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए,
क्योंकि लक्ष्य होना चाहिए भजन करना, जहां भजन हो सके, जहां भगवान का ध्यान हो सके, भगवान का नाम हम अच्छा तरह से कर सके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यहां पर मन लग सके भागवत कथा सुनने में, नाम जप में, और परमहंस गति को बतला रहे हैं भगवान ऋषभदेव। इसमें से तीन वृत्ति को वे अपनाए हैं, सॉरी चार वृत्ति को, एक वृत्ति है अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति, अजगर किसे कहते हैं, अजगर इति अजगर, जो गर से यानी विष से बिल्कुल परिपूर्ण हो उसे अजगर कहते हैं। ये जो सांप लोग होते हैं जब डसते हैं तब विष आता है, और वो भी सभी सांपों में विष नहीं होता है, कुछ ही कुछ में, नाग में होगा है? और कौन कौन ऐसे भी सांप हैं जिन्हें विष नहीं होता है, और विष वाले भी यदि सांप है उनका दांत तोड़ दिया जाए विष वाला, तो मदारी लोग उसको खिलाते रहते हैं है? नाग पंचमी के दिन देखो वो छोटे छोटे बच्चे टोकरी में सांप लेकर घूमते रहते हैं है? तो उसका कोई फायदा नहीं, उसमें कोई विष नहीं होता है, सांप है लेकिन विष नहीं है। लेकिन जो अजगर होते हैं उनके पास विषैला दांत नहीं होता है, बल्कि वो साक्षात विष के मूर्ति होते हैं, उनका सर्वस्व विस्मय होता है, उनकी परछाई विस्मय होगी, उनका पोछ है वो उसमें विष है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें भी विष निकलता है, इसलिए उनका नाम है अजगर। पॉयन प्रोसनिफिकेशन प्रोसनिफाइड, विष ही विष है, पोछ से मार देंगे गए आप काम से, फूक देंगे गए काम से, सांस लेंगे इतनी शक्ति होती कि आप दौड़ दौड़ कर मुंह में आ जाओगे, यह है अजगर, बड़े भयावह होते हैं। तो भगवान ऋषभदेव अजगर वृत्ति को स्वीकार किए ताकि उनके पास कोई परेशान करने ना आए, विष विष है ना, कैसे आएगा परेशान करने, सब भाग जाएंगे उनके पास नहीं आएंगे। तो अजगर वृत्ति को, अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम, दांत मलुका कह गए सबके दांत आराम है, वह है अजगर। तो अजगर वृत्ति को, अजगर कहीं जाते नहीं एक जगह रहते हैं, तो वे एक जगह रहने लगे। उसमें भी उसके बाद बताया गया है कि वे तीन अन्य वृत्तियां स्वीकार किए, गाय का वृत्ति, कौवे का वृत्ति और हरण का वृत्ति। गाय का वृत्ति देखिए, गाय जहां होती है वहीं पैसा पैखाना कर देती है, वो नहीं कुत्ते जहां पैखाना करते वहां बैठेंगे नहीं, पेशाब करेंगे पैर उठा करके बिछ पर पेशाब कर देंगे और भाग जाएंगे है? पैखाना करके भाग जाएंगे, लेकिन गाय नहीं करेगी, गाय पैखाना करेगी उसी पर बैठ जाएगी, शरीर में लगा देगी, पोंछ से मारती रहेगी चारों तरफ, उसका मल मूत्र पूरे शरीर में फैलेगा। तो ऐसे ही भगवान ऋषभदेव जहां बैठते थे वहीं मलमूत्र त्याग दे, अजगर वृत्ति। लेकिन यहां वर्णन किया गया है उनके मलमूत्र से सुगंध आता था है? ऐसा सुगंध आता था कि कितना 80 कोस है, 80 माइल 40 कोस, इस अवस्था में रहने कारण जनता ने ऋषभदेव को विचलित नहीं किया, उनके मल मूल से सुगंधित नहीं, दुर्गंधित नहीं निकलती, उल्टे उनका मलमूत्र इतना सुगंधित था कि उसके सुगंध से 80 मील तक का प्रदेश भर गया। ये है भगवान का परिचय। आजकल भगवान बनने का लोगों में होड़ है, हम भगवान बनना चाहते हैं। तो देखो भगवान के मल से भी सुगंध निकलता है। आजकल के भगवान का मल कुछ लोगों को बोलो कैसा है, सुगंधित दुर्गंधित है, हैं? ये भगवान लोगों को पूछो, ये भगवान का परिचय है, उनके मल मूत्र से सुगंध निकल रहा था। तो ये गाय का वृत्ति। उसके बाद हरिण वृत्ति। हरिण की क्या वृत्ति है? वो हमेशा सतर्क रहते हैं, हैं? हरिण लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, बैठेंगे तो अभी सतर्क, खड़े हैं तो अभी सतर्क। गाय सतर्क नहीं है, उठाना पड़ा, चलो उठो, तब उठती है, लेकिन हरिण को देखते ही ब्रह्म भाग जाएंगे। और कौवे, कौवे की वृत्ति। कौवे में दो वृत्ति है, उनके पास एक ही आंख होता है, लेकिन सभी पक्षियों में बड़ा चालाक होते हैं, हैं? एक ही आंख से सब कुछ देखते रहते हैं। तो ये जो अजगर वृत्ति प्राप्त किए हैं वे लोग दिव्य दृष्टि के द्वारा हमेशा सतर्क रहते हुए एकांतिक भाव से भगवत सेवा में लगे रहते हैं। अब इस श्लोक में उपसंहार के द्वारा कहा जाए इति, संस्कृत में दो शब्द होता है, एक अथ और एक इति। जब किसी वस्तु की शुरुआत होती है तो अथ कहा जाता है, और इति मतलब बीति, इतिहास से कहते हैं। इति मतलब इतिहास, मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। तो यह शुरू होता है इति नाना योगचर्या आचरणो। उन्होंने परमहंसों के को शिक्षा देने के लिए, परमहंस गति क्या होती है उसको शिक्षा देने के लिए, स्वयं कौन थे? कैवल्यपति, मुक्तिदाता, माता कुंती भगवान का प्रार्थना करते करते नमः अकिंचन मित्ताय और निवृत्त गुण वीरतये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपते नमः। कैवल्यपति भगवान मुक्ति के दाता हैं, मुक्तिदाता, मुकुंद हैं। ये मुकुंद रहते हुए भी वासुदेव, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण में लीन रह कर करके कैसे परमहंसों को रहना चाहिए यह बतलाया गया है। परमहंसों को वासुदेव परायण होकर के रहना चाहिए, नित्य निरंतर वासुदेव में ही आनंद की अनुभूति करते रहने चाहिए। दिव्य आनंद में सतत लीन रहते थे, परम ही आनंद अनुभव आत्मन सर्वेशां भूतानां आत्महूते भगवती वासुदेवे आत्मनो, भगवती वासुदेव आत्मनो। परमहंस के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान वासुदेव को ही सब कुछ मानना, आत्मना। भगवान ने गीता में कहा आत्मन्नेव आत्मसंतुष्ट। कब व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है? जब भगवान वासुदेव के परायण हो जाए, नहीं तो अशांत। जब तक से मुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की कामना बनी रहेगी तब तक से हम लोग अशांत रहेंगे। लेकिन जो कृष्ण भक्त बन जाएगा वह शांति को प्राप्त कर सकता है, और जो शांति को प्राप्त किया है वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। संसार में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, सब लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं। कहते महाराज शांति कैसे मिलेगी? शांति प्राप्त करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन शांति का रास्ता नहीं अपनाना चाहते हैं। शांति किसे चाहिए उसको क्या करना है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त बनना पड़ेगा। वो अभी कैसा कृष्ण भक्त? निष्काम कृष्ण भक्त। प्रभुपाद जी इस निष्काम शब्द का व्याख्या करते हुए श्लोक उद्धृत करते हैं, अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्माद अनावृत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा उत्तमा भक्ति, निष्काम भाव से। और वही बात यहां पर कहा गया है, भगवती वासुदेव भगवती वासुदेव आत्मनो अव्यधान अनंतो उद्भावे न, उसी बात को वासुदेव परायण होने से ही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण का भक्त बन करके ही कोई शांति को प्राप्त कर सकता है, और जो शांति को प्राप्त कर लिया है वह सुखी है, नहीं तो अशांतस्य कुतः सुख, जो व्यक्ति अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। यहां पर कहते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, संसार में हम लोग मूर्ख हैं, हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन कहां लगे रहते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि में। कभी कभी भक्त बनने आता है कोई, हरे कृष्ण भक्त बनने आया, कोई योगी आ गया कुछ चीज दिखा दिया, तो हम लोग धीरे धीरे उठ करके देखने चले जाते हैं, कथा छोड़ करके देखने चले जाएंगे, कौन बड़ी बात है ये वस्तुएं प्राप्त कराना। ऐसे भी हैं जो लोग सिद्धियों को प्राप्त किए हैं, ये फूल है, ये फूल को मुट्ठी में कहें कर करके कहें काजू खा लो, काजू बना देंगे उसको, फूल से काजू बना देंगे, सिद्धियां प्राप्त होंगी। कोई भभूत दे देगा, कोई राख दे देगा, और लोग हजार लोग मूर्ख हैं पूजा करते हैं। महाप्रभु कहते मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सब अशांत रहेंगे, वो भी अशांत हैं और उनके चेले भी अशांत रहेंगे। ये शांति की प्राप्ति करनी है उसे कृष्ण का भजन करना चाहिए। कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम भाव से कृष्ण भजन करें। भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है, परमहंस संहिता कहा गया है। जो व्यक्ति भागवत में जिसकी रुचि हो गई, जो भागवत का अध्ययन करने लगा, भागवत पढ़ना सुनना जो प्राप्त किया, वो परमानंद की प्राप्ति कर सकता है, शांति की प्राप्ति कर सकता है। भागवतम के शुरू में ही मैं संडे क्लास दे रहा था भागवत महात्म, उसके प्रारंभ में ही सुत गोस्वामी वर्णन किए हैं, धर्मा प्रोजित कई तवोत्र परम निर्मा शराणाम सताम वेदम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमान भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर श्रद्धो हृद अवरोधक तभी सुशुर्षुभि तत्क्षणात् तत्क्षणात् विदाउट वेस्टिंग टाइम भागवत का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। ये सब करेंगे बहुत फायदा है, फिर हम मुक्ति भुक्ति सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो अशांति का जड़ है, बल्कि भागवतम से सत्यम परम धीमही परम सत्य पर ध्यान करेंगे। शुरू में ही परम सत्य का ध्यान बताया गया है और अंतिम में परम सत्य का ध्यान। भागवतम और कुछ नहीं, केवल एक चीज के लिए है, वह है सत्यम परम धीमही, परम सत्य के ध्यान के लिए। तो भगवान ईश्वरदेव बतलाए परमहंस गति को, तो भगवान वासुदेव के भजन से निरंतर वे आनंदानुभूति करते थे। लेकिन संसार में जो आनंद जिसे हम लोग कहते हैं मुक्ति भुक्ति इत्यादि को, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, सब सिद्धियां उनके पास थी, लेकिन उसके तरफ देखते भी नहीं थे। उनमें अशास्त्रकी विकार था, रोमांचकम बास तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो वे उसी में मग्न थे और जितनी योग्य सिद्धियां थे उनके पीछे पीछे जोड़ती थी। जैसे इसमें से कुछ बताया गया है, कहते हैं वासुदेव आत्मनो अव्यधानम अंतर्भाव सिद्ध समस्तार्थ परिपूर्ण योगेश्वराणि वैहाय समो योजन अंतर ध्यान। यहां कहा गया कि मन के गति से वैहाय स मतलब आकाश में उड़ना। कभी कभी लगता है कि कैसे पक्षी बिल्कुल उड़ रहे हैं प्रेम से है? अच्छा लगता है ना कभी कभी कि हम भी उड़ते कितना अच्छा होता है, अच्छा लगता है देख करके पक्षियां उड़ती है। हम उड़ सकते हैं, यदि आप उड़ना चाहते हो उड़ सकते हो ये योग शक्ति के द्वारा। ये योग शक्तियां भगवान इस समय पीछे चलती थी लेकिन उसके तरफ वे नहीं गए। यही भक्त का पहचान है। कोई आ जाए करके आपको हम शक्ति दे देंगे आप उड़ सकते हो, करी बड़ा छाती है चलो हम थोड़ा ट्राई मारते हैं है? भक्त कहेगा नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। उसके बाद मन जब वो मन की गति से दौड़ सकते थे, जो भी लोग मन की गति से, हम तो मन की गति से जा सकते हैं दौड़ नहीं सकते, यहां बैठे हैं और जहां देख करके आए हैं वहां जा सकते हो जाकर आ जाओगे लेकिन दौड़ नहीं सकते हो, शरीर यही रहेगा। लेकिन योगी लोग मन के गति से जा सकते हैं दौड़ सकते हैं। अंतर ध्यान होने की शक्ति उनमें थी। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा कहने जा रहे थे तो सत्यलोक से ऋषि लोग आए थे, ब्रह्मलोक से ऋषि लोग आए थे, गंगा जी में डुबकी लगाए और पहुंच गए सुक्ता। अंतर ध्यान होने की क्रिया से योग सिद्धियां उन लोगों में थी। एक दूसरा है परकाय प्रवेश, परकाय मतलब दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, यह भी एक सिद्धि है। बुढ़ा हो गया है शरीर परेशान कर रहा है, चलो नया शरीर में प्रवेश कर जाए, जैसे भूत चले जाते हैं तो योग सिद्धि के द्वारा ये सब उन्हें प्राप्त थी। लेकिन न अंधसा नृप, या नृप शब्द सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित आप वो टेम्पटेशन मत प्राप्त करना, उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी, आप जो कथा सुने वो ठीक है, आपका मन कहीं उधर न चला जाए, इसलिए आप नृप शब्द संबोधित करते हैं, कहीं महाराज परीक्षित भटक न जाए जगा रहे हैं है? कहने यह दृक्षय अन गति न अंजसा नृप, हे महाराज सब कुछ होने के बाद भी न अंजसा, इनको कोई इच्छा नहीं थी, प्रत्यक्ष इच्छा नहीं थी कि इसे मैं प्राप्त करूं। यानी कहने का मतलब कि आप भी ऐसा कभी भूल कर भी इच्छा मत कर लेना कि मैं सिद्धियों को प्राप्त कर लूं। हृदय न अभिनंदत, इन्होंने हृदय में कभी स्वीकार नहीं किया सिद्धियों। आज सिद्धियां पीछे पीछे पड़ी थी, कोई हमारे पीछे पड़े 10 करोड़ का चेक लेकर के हमारे नाम से कि आपको मैं देना चाहता हूं है? हम सब छोड़ करके उसे पीछे दौड़ेंगे कि भगवान ऋषभ देव इसके पीछे नहीं दौड़े। तो इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव के जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं इस श्लोकों में, अजगर वृत्ति से लेकर के अब तक से परमहंस गति को, जो वैरागी हो गया है, जो सन्यास ले लिया है, जो सन्यासी है, उसको यह वस्तुएं ये लक्षण होने चाहिए। इसमें 3 चीज बताए गए हैं, एक तो वासुदेव परायण थे, दूसरा कि उनमें रोमांचकंप जो शत्रु की विकार थे वे प्राप्त थे, उसी में वे आनंदानुभूति करते थे, और तीसरा ये सब सिद्धियां उनके पीछे पीछे दौड़ती थी, लेकिन इन सिद्धियों को कभी उन्होंने भाव नहीं दिया। और नृप शब्द कह करके महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी हिंट किए हैं कि उसे उन्होंने पसंद नहीं किया, उसे कोई भाव नहीं दिया। यानी आप भी भाव मतदान, यानी हम लोग भी जो भागवत में प्रेम रखते हैं, जो परमहंस गति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोगों को भी इसमें रुचि नहीं रखनी चाहिए। मुक्ति भुक्ति सिद्धि प्रभुपाद जी तात्पर बतलाए हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो मुक्ति कामी हैं, योगी लोग जो हैं वो सिद्धि कामी हैं, और कर्मी लोग जो हैं वो भुक्ति कामी हैं, भोगना चाहते हैं। तो हम में से तीनों में से कोई नहीं बनना चाहिए, न तो हम कर्मी बने संसार को भोगने का प्रयास न करें, न तो ज्ञानी बने मुक्ति। ये स्वयं कैवल्यपति हैं, मुक्ति के दाता हैं, लेकिन फिर भी परमहंसों की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार से उन्होंने किया। इस प्रकार से इस अध्याय के भगवान ऋषभ देव द्वारा शिक्षा समाप्त हुई। आज का दिन अक्षय तृतीय का दिन है। अक्षय का मतलब होता है जो क्षय न हो, जो कभी क्षय न हो। चार दिन ऐसे हैं साल में जो अक्षय हैं। एक है गुड़ी पड़वा, दूसरा है अक्षय तृतीया, तीसरा है दिवाली और चौथा है दशहरा। ये चार तिथि जो हैं वो अक्षय तिथि है, शुभ मुहूर्त है कोई भी कार्य करना हो। हमारी वैदिक संस्कृति ऐसे डिजाइन की गई है जिसमें पर्व त्योहार के द्वारा लोगों को उल्लास उमंग और आनंद का सुअवसर दिया जाता है। दुख की बात है कि दिनानुदिन खत्म होते जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा जी यहां पर अवतरित हुई थी इस तरह धाम पर। अक्षय तृतीया के दिन सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, चार युगों में से जो त्रेता युग है वह प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, और आज के दिन ही अक्षय तृतीया के दिन ही जौ, गेहूं जौ होता है ना, जौ का निर्माण हुआ था। क्योंकि त्रेता युग में यज्ञ होगा और यज्ञ का एक प्रमुख अवयव है जौ, तो उसका भी आज के दिन ही जामदग्नेय पराशर जमदाग्नि जी के पुत्र जमदाग्नि और रेणुका से भगवान परशुराम आए थे, परशुराम जी का अवतार हुआ था। आज के दिन ही भगवान बराह अवतार ग्रहण किए। तो इस प्रकार से बहुत ही पुण्यतिथि है आज का दिन अक्षय तृतीया। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से लोग अक्षय तृतीया को मनाते हैं। राजस्थान में अलग मनाने की पद्धति है, उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, साउथ में अलग है, अलग अलग। आज के दिन खूब दान देना चाहिए, जितना हो सके दान दो। कहां चले गए हमारे गर्ग जी? लो, जब उनको सुनने का समय चले गए। आज दान खूब देना चाहिए, क्योंकि अक्षय है इसलिए अक्षय धन की प्राप्ति होगी। और वैसे ही भगवत गीता को भी अक्षय शास्त्र बताया गया है। तो आज ज्यादा जप भी करना चाहिए, गीता पाठ करें, भागवत सुने या भागवत पढ़ें, तो उसे अक्षय आनंद की भी प्राप्ति होगी। जो भी करेंगे अक्षय होगा, यदि हम सोना चाहते हैं तो सो लेंगे तो भी अच्छा होगा,
कुंभकर्ण बन जाएंगे,
चिंता मत करो, खूब सो सकते हो साल भर प्रेम से है। तो जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। आज के दिन आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, अच्छा है, तृतीय का दिन, मंदिरों को सजाया जाता है अच्छी तरह। ऐसे पूरा ये महीना है वैशाख महीना, इसे माधव मास कहते हैं, बड़ा श्रेष्ठ महीना है। ब्रह्मवैवत पुराण में इस महीने का वर्णन किया गया है। कितना समय भाई? 9 बजे में बोल दिया था। न माधव समो मासो न कृते न जुगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ न तीर्थम गंगया समम न माधव समो मासो। ऑफकोर्स अलग अलग मासों का अलग अलग महिमा है। कार्तिक को विश्व मास मानते हैं, लेकिन ब्रह्मवैवत पुराण में कहा गया है न माधव समो मासो, माधव मास के महीने के समान अच्छा कोई महीना नहीं है। न कृते न जुगम समम, न सतयुग के समान कोई दूसरा युग है। न च वेद शास्त्र, न च वेद समम शास्त्रम, वेद के समान कोई दूसरा शास्त्र है। न तीर्थ गंगया समम, न तो गंगा के समान कोई तीर्थ स्थली है। तो यह माधव मास में आज का जो दिन है तृतीया, अक्षय तृतीया, यह बड़ा शुभ मुहूर्त है। तो मैं यही कथा का विराम करूंगा। किसी को प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रश्न। बोलो बोलो। आए? हाँ, अरे वो मतलब भूलिए गया, आज के दिन मंदिरों में भगवान जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ जी को चंदन यात्रा ना है, चंदन लगाते हैं। और चैतन्य चरितामृत में हम लोग सुने हैं किस प्रकार से माधवेन्द्रपुरी जब गए थे चंदन लाने के लिए, भगवान ने उनको स्वप्न दिया था कि मेरा शरीर तप्त हो गया है, चंदन लाओ जाकर के नीलाचल से और मैं शरीर में लेप करो। जब वे लेकर के आ रहे थे तो रेमुणा आए, यहां पर गोपीनाथ जी है, चिरचिर गोपीनाथ, और वहां पर उन्होंने स्वप्न दिया कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तुम आज ये चंदन यहीं पर गोपीनाथ के शरीर में लगा दो। तो आज के दिन मंदिरों में ठाकुर जी के शिव विग्रह में चंदन का लेप किया जाता है, जगन्नाथ जी के केवल आंख को छोड़ करके पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है, पूरे शरीर में। तो 7 दिन तक चलता है ना, 21 डे, 21 दिन तक चंदन यात्रा ये भी है। और कोई अच्छा याद दिलाओ, मैं घड़ी देख रहा था, तकलीफ यही है। अब तो क्या करें, कोई पालन न करे तो क्या कर सकते हैं, अपने मन से लोग बुद्धि लगा देते हैं। प्रभुपाद जी इस्कान के फाउंडर आचार्य हैं, कुछ लोग अपने मन से बुद्धि लगाते हैं, क्या करेंगे। नर हरिदास ठाकुर ने लिखा है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के लीलाओं में जब रुचि नहीं रह जाएगी, जब खत्म हो जाएगा, तो चाहे उत्तम अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, कनिष्ठ अधिकारी हो, सब लोग रिसर्च करेंगे भगवान कौन है, प्रेम कैसे प्राप्त होगा, तो अलग अलग रिसर्च करते हैं। प्रभुपाद जी दे चुके हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जैसे दिए वैसे नाचो, प्रभुपाद जैसे दिए वैसे बोल गाओ। अब नया नया टून, नया नया सब शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे ही जैन लोग शुरू कर दिए। भगवान ऋषभ जो दिए उतना पालन करो, बने रहोगे अपने मन से। भक्ति का लक्षण है कि भगवान प्रसन्न हो। कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तमा, लेकिन हम लोग करते हैं हम कैसे प्रसन्न हो, हम टून जो गा रहे हैं उसमें भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं ये मालूम नहीं है। हम जो गा रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं, हम नाच रहे हैं कैसे नाच रहे हैं। प्रभुपाद जी सब कुछ दिए हैं, कुछ कमी नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद जी की टीचिंग है, ये प्रमाणित करता है कि हम लोग प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो ये शिक्षाएं रहेगी। प्रभुपाद जी का भजन, हम प्रभुपाद जी का कीर्तन सुने, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 1982 में वो आया था हरिओम शरण का प्रभुपाद कृपा, वही एक टेप था बाहर का, नहीं तो प्रभुपाद जी का टेप था और अच्युतानंद महाराज का था हिंदी भजन। हम लोग कोल्हापुर में थे और शुरू किए सुबह में, तो टेप बजा करके हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो हरिओम शरण का टेप बजाना शुरू किया, तो हमें ऐसा अनुभूति हो रहा था कि मेरा मन ऐसे जा रहा है, बंद हो रहा है बिल्कुल। और ये प्रभुपाद जी का शुरू किया, वंदे हम श्री गुरु श्री जी, ऐसे होने लगा, बाहर निकलने लगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बाहर का ये सुनेंगे, मूवी का सब टून बना बना करके ठीक है, ट्रांसडेंटल कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ट्रांसडेंटल पुरुष हैं, वो अजगर हैं, हैं? उनका सब अजगर है, उनका वाणी भी अजगर है, शरीर भी अजगर है, सब कुछ अजगर है, और सब लोग सांप हो सकते हैं, प्रभुपाद जी अजगर हैं, तो उनके वाणी को हम दोहराएं केवल, और कुछ ना करें, केवल दोहराएं, जस्ट वी रिपीट व्हाट ही सेड, हम लोग कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हम भी जैन बन जाएंगे, ऋषभदेव को भूल जाएंगे। और कोई प्रश्न?
ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी लोग जब भी मुक्ति पाते हैं तो उनका आत्मा का विलीनीकरण हो जाता है ब्रह्म में, और ये भी बोला जाता है कि वो वहां,
आप थोड़ा दूर से बोलो मैं समझ जाऊंगा।
ज्ञानी लोग जब भी मुक्ति पाते हैं तो उनके आत्मा का विलीनीकरण हो जाता है ब्रह्म में,
कैवल्य मुक्ति,
कैवल्य मुक्ति,
कैवल्य मुक्ति।
तो ये भी कहा जाता है कि वो ज्यादा टाइम वहां टिक नहीं सकते क्योंकि वहां कोई कंपनी नहीं होती है, तो दे कम डाउन बैक टू द अर्थ। तो जो आत्मा का विलीनीकरण हो गया ब्रह्मन में, वो फिर से व्यक्तिगत आत्मा कैसे खड़ा हो जाएगा और यहां आ जाएगा? उनका तो मिश्रण हो गया ब्रह्मन में।
तो देखिए, मुक्ति पांच प्रकार की होती है, सब लोग केवल मुक्ति को नहीं जानना चाहते हैं। साजू जी मुक्ति एक मुक्ति है, उसमें सामिप्य है, सारूप्य है, शास्त्री है, सालोक्य है और साजुज्य है। इस कैवल्य मुक्ति का कैवल्य नरक आयते, ये नरक के समान है, ये नरक के समान है। और ये जो है लास्ट स्नेयर है, उसके ऊपर अन्न सब ये लास्ट में है। तो चूंकि वहां पर जाते हैं लेकिन वो नरक के समान है, मुक्ति की कामना करना इटसेल्फ ये ठीक नहीं है। उसे पिशाची का उपमा दिया गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, जिसके हृदय में मुक्ति की भावना होती है, पिशाची वर्तते हृदय समथिंग है। हाँ, ये मुक्ति भक्ति को पिशाची से तुलना दिया गया है, तो उस अंधकार में ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। तो जीव इंडिपेंडेंट वहां भी है, आना चाहे तो आ सकता है, वहां से भी आ सकता है, पता हो सकता है वहां से, यहां तक कि प्रभु हम लोग भगवान के साथ में थे, वहां से भी यहां आ गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनका एक सेवक था, एक दिन वो जमुना जी में एक मछली मारने वाला मलाह था, तो रात को मछली मारता था, तो उसका नौका ऊपर चढ़ा था, तो किसी ने हल्ला कर दिया कि भगवान आकर के कालियादह में भगवान रात को विहार करते हैं, है? तो भी सुन लिया, तो उसकी इच्छा हो गई, तो एक दिन महाप्रभु से पूछने के लिए आया कि क्या मैं जा सकता हूं देखने के लिए। महाप्रभु एक झपड़ मारे बदमाश कहीं का, सच्चा भगवान यहीं पर है, लेकिन वहां भी उसकी इच्छा हो गई हमें देखने के लिए। तो जीव का इंडिपेंडेंस कहीं खत्म नहीं होता है, भगवान के पास जाने के बाद ही इंडिपेंडेंस रहता है, मैं सेवा कैसे करेंगे?
सायुज्य और केवल एक ही
सायुज्य मतलब विलीन हो जाना,
केवल जो भी,
लेकिन इंडिविजुअली खत्म नहीं होती है। जैसे है हरा पेड़ है, एक हरा चिड़िया चली गई, उसमें विलीन हो गई, इसका मतलब है कि पेड़ बन गई, वो चिड़िया ही है, लेकिन चूंकि पेड़ हरा है और चिड़िया भी हरी है वो दिखाई नहीं पड़ रही है, बस इतना ही है। विलीन होने का मतलब यही है।
केवल्य और सायुज्य एक ही है, केवल्य और सायुज्य एक ही है, एक ही
हाँ दोनों एक ही।
थैंक यू।
जय श्री राधा रास बिहारी भगवान की, जय श्री प्रभुपाद की, जय।